ईशानी को लगभग 7 दिन बाद होश आया था। वो इस समय एक अनजान जगह पर थी जहां आर्मी के 3 लोग उसका ख्याल रख रहे थे। उनमें से एक उनका कैप्टन था और बाकी 2 सेना में भर्ती हुए नए लड़के थे। सुबह उठकर जब ईशानी बाहर आई तो वो तीनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। जैसे ही ईशानी की नज़र कैप्टन की यूनिफॉर्म पर गई, वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसकी ड्रेस देखते ही ईशानी ने पहचान लिया था कि वो इस वक्त पाकिस्तान में है। उसने पाकिस्तानी आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी। या अल्लाह, फिर से बेहोश हो गई ये खातून। कसम से मैं तो इन्हें संभालते हुए थक गया हूँ। तुम आओ मेरी मदद करो साद, खाना बनाने वाले लड़के ने दूसरे लड़के से कहा। साद जल्दी से आया और ईशानी को संभालने लगा। उसने दूसरे लड़के की तरफ देखकर कहा, आदम यार, मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी दूसरे बंदे ने इसे यहाँ देख लिया तो हमारा तो अल्लाह ही हाफिज होगा फिर। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। आदम और साद मिलकर ईशानी को अंदर लेकर गए। वहीं उनका कैप्टन अभी बाहर खड़ा था। उसने खुद से कहा, माशाअल्लाह से शक्ल तो अच्छी है मेरी, फिर ये मैडम बेहोश क्यों हो गई? वो अपने ख्यालों में खोया था तभी अंदर से साद के चिल्लाने की आवाज़ की आई, कैप्टन सर, कैप्टन जैन, अंदर तशरीफ लाएं और देखें इस मोहतरमा को, खुदा जाने क्या हो गया इन्हें। साद की आवाज़ सुनकर जैन का ध्यान टूटा और वो दौड़कर अंदर गया। अंदर जाते ही जैन ने हल्की घबराहट के साथ कहा, क्या तुमने भी ये महसूस किया? मेरे कहने का मतलब है, जब उसने मुझे देखा उसके बाद ही ये अपने होश खो बैठी। जैन ने मासूमियत से सब कुछ कहा था। उसका चेहरा दिखने में काफ़ी इनोसेंट भी था। उसकी बात सुनकर साद और आदम इधर उधर देखते हुए हल्का हंसने लगे। आदम ने अपनी हंसी कंट्रोल करके कहा, हम जानते हैं आप दिखने में काफ़ी हैंडसम है सर, पर अब खुद की तारीफ से खुद के मुंह से थोड़ी ना अच्छी लगती हैं। ये खातून घबरा गई होगी, इस वजह से बेहोश हुई है, ना कि आपका मासूम और हैंडसम चेहरा देखकर। तुम दोनों भी ना कैसी बातें कर रहे हो, जैन ने सिर हिलाकर कहा और फिर ईशानी का टेम्परेचर चेक किया। उसे हल्का बुखार था। थर्मामीटर को उनकी तरफ करके जैन ने मुंह बनाकर कहा, देखा, उनकी तबीयत खुश्क है, इस वजह से ये बेहोश हुई थी। अब जाओ और काम करो, कोई हमारे बारे में पूछे तो बोल देना कि आज थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। ठीक है, बोल देंगे, पर हाफ डे के बाद आप ड्यूटी पर पहुंच जाएं, उसके बाद हम इनकी रखवाली कर लेंगे, साद ने कहा और फिर उठकर जाने लगा। साद और आदम दरवाजे के पास पहुंचे ही थे तभी जैन ने सख्त आवाज में कहा, गलती से भी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे यहाँ हैं। हम अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये जिस कंडीशन में मिली है एक जासूस भी हो सकती है। पूरा पता लगाने के बाद ही हम इसे आर्मी को सौंपेंगे। आदम और साद ने मुड़कर उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रुद्राक्ष इस वक्त रुद्री के पास था। उसे भी होश आ चुका था, मोक्ष भी वहीं पर था। रुद्री को होश जरूर आ गया था लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी, तो डॉक्टर ने उसे किसी भी तनाव से दूर रखने के लिए कहा था। रुद्री का मूड अच्छा करने के लिए मोक्ष ने उसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, देखिए मॉम, हमने ईशानी की बहन ऋषानी को इंसाफ दिला दिया है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ भाई का है। उनके पास से एक डायरी थी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। आलिया को पूरे 12 साल की सजा हुई है, जेल में रहते हुए उसकी अकल जरूर ठिकाने आ जाएगी। जैसे ही मोक्ष ने उसे सब बताया, रुद्री के होठों पर हल्के सी मुस्कुराहट आ गई। वो सिर हिलाकर धीमी आवाज में बोली, ईशानी तो बहुत खुश होगी ना, कहाँ है वो, मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? रुद्री के पूछते ही मोक्ष इधर उधर देखने लगा था तो वही रुद्राक्ष की आंखें भी नम होने लगी थीं। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेकर सख्त आवाज में कहा, वो भी आपसे मिलना चाहती थी लेकिन आप दोनों का एक्सीडेंट साथ में हुआ था ना। एक्चुअली ईशानी के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं मॉम, और वो इस वक्त दीपिका जी के साथ में है, वहीं उनकी बेहतर केयर कर सकती है। बोलते हुए रुद्राक्ष की आवाज़ भारी होने लगी थी। रुद्राक्ष कमजोर पड़ने लगा था, इससे आगे शायद वो ईशानी के बारे में और झूठ नहीं बोल पाता। मोक्ष ने बात को संभालते हुए कहा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, केस भी मैंने ही हैंडल किया था। वो तो कोर्ट आने की भी जिद कर रही थी पर मैंने मना कर दिया। हम उसे यहाँ रख लेते लेकिन केस और आपके चक्कर में उसकी ठीक से केयर नहीं हो पाती। हाँ समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं उसे कॉल पर बात कर लूँगी, रुद्री ने हल्के तरीके से जवाब दिया। रुद्राक्ष वहाँ से उठकर बाहर जाने लगा। उसने रुद्री से बहाना लगाते हुए कहा, आप रेस्ट कीजिए मॉम, डॉक्टर ने आपको ज़्यादा बोलने से मना किया गया है, मैं आता हूँ। रुद्राक्ष के बाहर जाते ही रुद्री ने मोक्ष से कहा, रुद्राक्ष इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। जब भी वो ऐसा करता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, माथे पर पसीना आने लगता है। शायद आपको पूरी बात पता नहीं है इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। एक्चुअली भाई ने खुराना फैमिली को पूरी तरह छोड़ दिया है, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो रही है मॉम, प्लीज़ उनसे ज़्यादा कुछ मत पूछिएगा, वो उनके जाल से बाहर निकल गए, हमारे लिए यही काफ़ी है, मोक्ष ने रुद्री को टालते हुए कहा। रुद्री ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब रुद्राक्ष और ईशानी आराम से साथ में प्यार से रह सकते हैं। रुद्री बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मोक्ष ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, मॉम बस अब आप ज्यादा बात मत कीजिए, आपको पता है ना डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मोक्ष ने रुद्री को कुछ दवाइयां दी और फिर उन्हें लेटा दिया था। वहीं रुद्राक्ष रुद्री के कमरे से बाहर आते ही सीधा कैंटीन एरिया में गया। उसने अपने लिए हार्ड कॉफी ऑर्डर की। रुद्राक्ष इस वक्त गहरी सांसें ले रहा था। वो मन ही मन बोला, कहाँ चली गई हो तुम? मेरा दिल कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो ईशानी। वादा किया था तुमने कि मैं खुराना फैमिली को छोड़ दूंगा, तो तुम मेरे साथ प्यार से रहने के लिए आओगी। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन तुम तो मुझे ही छोड़कर चली गई। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन मेरे लिए मेरी ईशानी जिंदा है और हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। रुद्राक्ष ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करके पूछा, खुराना फैमिली का क्या अपडेट है? उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पता चला है कि आपका छोटा भाई नवयम खुराना भी घर छोड़कर म्यूजिक एकेडमी चला गया है। शायद विक्रांत खुराना पूरी तरह अकेला पड़ गया है। अभी वार करने का बिल्कुल सही वक्त है। सामने से एक लड़की की आवाज आई। रुद्राक्ष ने कुछ पल रुककर कहा, नहीं भूमि, ये सही टाइम नहीं है। थोड़ा और टाइम देना होगा और रुकना होगा। तब तक तुम मुझे हर एक अपडेट देती रहो। उसके बाद रुद्राक्ष कुछ एक मिनट के लिए चुप हो गया। वो बिल्कुल धीमी और मायूस आवाज में बोला, एक्सटेंट स्पॉट के आसपास के एरिया में पता किया कि वहां कोई 22 साल के आसपास की लड़की मिली है। ईशानी मैम का कहीं पता नहीं चला है, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। ऐसे लग रहा था जैसे उनका एक्सटेंट हुआ ही ना हो, या एक्सटेंट होने के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया हो, भूमि ने भी उदास आवाज में कहा। पिछले कई दिनों से वो रुद्राक्ष के लिए ईशानी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशानी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, कोशिश जारी रखो। मुझे हार नहीं माननी और ना ही ये सोचना है कि उसे कुछ हुआ है। वो बिल्कुल ठीक है, देखना कुछ दिनों बाद वो खुद मेरे पास आ जाएगी, रुद्राक्ष ने भारी आवाज में कहा और फिर कॉल कट कर दिया।
मोक्ष दौड़कर रुद्राक्ष के ही पीछे आया था। रुद्राक्ष काफी लो फील कर रहा था, तो वो उसे संभालने के लिए आया था। उसने रुद्राक्ष की कुछ बातें सुन ली थीं। मोक्ष रुद्राक्ष के पास बैठा और थोड़ी सख्त आवाज में बोला, जानता हूं आपके लिए या किसी के लिए भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है, पर वो इस दुनिया में नहीं रही है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी झूठी उम्मीद के सहारे रहो। आपको बहुत कुछ करना है भाई, जानते हैं ना ये किसने करवाया है, और अगर आप इस तरह वीक पड़े तो हम कभी उनसे बदला नहीं ले पाएंगे। रुद्राक्ष ने मोक्ष को विक्रांत से हुई बातों के बारे में बता दिया था। मोक्ष तो वैसे भी विक्रांत से नफरत करता था, वो रुद्राक्ष का पूरा साथ दे रहा था। रुद्राक्ष ने मोक्ष की तरफ देखकर कहा, मैं कमजोर नहीं हूं और ना ही कमजोर पड़ने वाला हूं। मुझे अच्छे से पता है कि किसके साथ क्या करना है, पर इन सबके चक्कर में मैं अपनी वाइफी को इग्नोर नहीं कर सकता। अकेली है वो और उसे ढूंढना होगा। रुद्राक्ष ने अपनी बात काफी सख्ती से रखी और फिर वहां से चला गया। मोक्ष अकेला वहां पर बैठा था। रुद्राक्ष के जाने के बाद वो गहरी सांस लेकर बोला, उम्मीद है मेरे भाई की उम्मीदें कभी ना टूटे। आई होप तुम जिंदा रहो ईशानी, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा था और मेरे भाई की जीने की वजह बन गई हो तुम। तुमने उन्हें बहुत बदल दिया है। उनकी जिंदगी का एक नया फेज शुरू होने जा रहा है। वक्त ले लेना, पर नाउम्मीदी मत देना। वो सब ईशानी के जिंदा होने की उम्मीद ही कर सकते थे, लेकिन रुद्राक्ष के दिल को यकीन था कि उसकी ईशानी को कुछ नहीं हो सकता। उनसे अलग शाम के लगभग 7 बजे के करीब ईशानी को होश आया तो जैन उसी के पास बैठा हुआ था। जैन को देखकर ईशानी जल्दी से उठकर बैठी। वो उसे देखकर घबरा रही थी। उसके चेहरे पर डर के भाव देखकर जैन ने उसे शांत करने के लिए काफी रिलैक्सिंग वे में कहा, देखिए आप इस तरह मुझे देखकर खौफजदा मत होइए, मैं इतना भी डरावना नहीं देखता हूँ। पहले आप मुझे देखकर बेहोश हो गई तो अब इस तरह रिएक्ट कर रही हैं। मुझे अपने घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ईशानी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक लॉयर थी तो अच्छे से जानती थी कि पाकिस्तान जैसी जगह पर एक इंडियन का संदिग्ध हालातों में मिलने का मतलब क्या होता था। अच्छा ठीक है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। चलिए बताइए आप कहाँ से हैं, जैन ने जवाब दिया। ईशानी के चेहरे की मासूमियत और घबराहट देखकर उसे यही लगा कि वो कोई बेचारी लड़की है जो गलती से वहां आकर फंस गई थी। ईशानी ने नजरें नीचे की और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, मुंबई, इंडिया। ईशानी ने अपना एड्रेस काफी धीरे बताया था। जैन ने इरिटेट होकर सिर हिलाकर कहा, देखिए साफ साफ बताइए, हमें आपके लव सुनाई नहीं दे रहे हैं। ईशानी ने अपनी नजरें उठाई और जैन की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए हल्की तेज आवाज में कहा, मुंबई, इंडिया से। ईशानी के इंडिया से होने की बात सुनकर जैन तुरंत हरकत में आ गया। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर ईशानी के माथे पर लगा दी थी। वही हो रहा था जिसका ईशानी को डर था। उसे एक जासूस समझा जा रहा था। क्या लगता है, रुद्राक्ष ईशानी को ढूंढ पाएगा या जैन ईशानी की हेल्प करेगा। पता नहीं ईशानी को क्या कुछ नहीं भुगतना होगा। वैसे पाकिस्तानी शोज देखकर मैंने उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत अडेप्ट की है। आई होप सही से हो गया। एक छोटी सी कोशिश है। पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।